ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्, देवीं सरस्वतीं व्यासम्, ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा। तो प्रतिदिन की तरह आज पुनः हम लोग श्रीमद् भागवतम से श्रवण करेंगे। तो जैसा कि आप सबको विदित है कि यहां पर श्रीमद् भागवत के अष्टम स्कंद के अंतर्गत 16वें अध्याय का आज 7वां श्लोक होना है। यहां पर प्रसंग चल रहा है पयोव्रत का पालन करना, पयोव्रत पूजा विधि का पालन करना यहां पर इस चैप्टर में आगे आएगा। तो उसके लिए पहले पूर्व प्रस्तावना में जो चर्चा है हम उसको यहां करेंगे। तो अभी जो प्रसंग प्रकृत में चल रहा है अतिथि का है कि कश्यप जी आए और उन्होंने अतिथि के विषय में थोड़ा सा कहा है अपनी पत्नी को सांत्वना पूछते हुए कि तुम क्या क्यों दुखी हो, क्या तुमसे किसी अतिथि का घर में आए हुए किसी व्यक्ति का अपमान तो नहीं हो गया या कोई अपराध तो नहीं बन गया। इस प्रकार से वो दो चार क्वेश्चन किए हैं। तो इसकी चर्चा आज हम लोग यहां पर इस श्लोक के माध्यम से करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम श्लोक को दोहराएंगे मेरे पीछे। ग्रहेषु येषु अतिथया नार्चिताः सलिलै अपि यदि निर्यान्ति ते नूनं फेरुराज ग्रहोपमाः। येषु ग्रहेषु येषु अतिथयो ग्रहेषु येषु अतिथयो नार्चिताः सलिलैरपि नार्चिताः सलिलैरपि यदि निर्यान्ति ते नूनम्, यदि निर्यान्ति ते नूनम् फेरुराजग्रहोपमाः। पढ़िए। ग्रहेषु येषु अतिथयो चिता सलिलैरपि अन्तिते नूनम् फेरुराज ग्रहोपमाः। ग्रहेषु येषु अतिथयो नार्चिता सलिलैरपि यदि निर्यान्ति ते नूनम् फेरुराज ग्रहोपमाः। ग्रहेषु येषु अतिथयो नार्चिता सलिलैरपि यदि निर्यान्ति ते नूनम् फेरुराज ग्रहोपमाः। ग्रहेषु ये स्वतिथयो नार्चिता सलिलैरपि यदि निर्यान्ति ते नूनम् फेरुराजग्रहोपमाः ग्रहेष्वे स्वतिथयो नार्चिता सलिलैरपि यदि निर्यान्ति ते नूनम् फेरुराजग्रहोपमाः माताजी ग्रहेष्वे स्वतिथयो नार्चिता सलिलैरपि यदि निर्यान्ति ते नूनम् फेरुराजग्रहोपमा शब्दार्थ ग्रहेषु घर पर येषु जिस अतिथयः आमंत्रित मेहमान न नहीं अर्चिताः स्वागत किए गए सलिलैरपि कम से कम एक ग्लास जल दे करके यदि निर्यान्ति वापस चले जाते हैं ते ऐसा गृहस्थ जीवन नूनम निसंदेह फेरु राज सियारों का घर ग्रह घर उपमाह सदृश अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की अनुवाद जिन घरों में मेहमान एक गिलास जल भेंट किए गए बिना वापस चले जाते हैं वे घर खेतों के उन बिलों के समान हैं जिनमें सियार रहते हैं दोहराएंगे जिन घरों से मेहमान एक गिलास जल भेंट किए गए बिना वापस चले जाते हैं वे घर खेतों के उन बिलों के समान हैं जिनमें सियार रहते हैं तात्पर्य खेतों में सांपों तथा चूहों द्वारा बनाए गए बिल होते हैं किंतु यदि बिल बहुत बड़े हों तो माना जा सकता है कि वहां सियार रहते होंगे निस्संदेह ऐसे घरों में कोई आश्रय लेने नहीं जाता इस तरह मनुष्यों के घर जिनमें अतिथियों का ठीक से स्वागत नहीं किया जाता है वे सियारों के घरों के समान हैं। सियार चंदन श्रीगाल तो वे घर श्रीगालों के समान है ऐसा यहाँ पर कहा गया है अब हम इसकी चर्चा थोड़ी देर से करते हैं ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः श्री चैतन्य मनोविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः सर्वशास्त्राब्धिपीयूष सर्ववेदैकसत्फल सर्वसिद्धान्तरत्नाढ्य सर्वलोकैकदृक्प्रद सर्वभागवत प्राण श्रीमद्भागवत प्रभो कलिध्वान्तोदितादित्य श्रीकृष्ण परिवर्तित परमानन्द पाठाय प्रेमवर्षक्षराय ते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमोऽस्तु मे मदेकबन्धो मत्सङ्गिन् मद्गुरो मन्महाधन मन्निस्तारक मद्भाग्य मदानन्द नमोऽस्तु ते असाधु साधुतादायिन्नतिनीचोच्चताकर हानमुञ्च कदाचिन्माम् प्रेम्णा हृतकण्ठयो स्फुर जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। यहाँ पर उपस्थित समस्त वैष्णव भक्तों और माताओं के चरणों में प्रणाम करते हुए आज के इस वक्तव्य को प्रारंभ करने जा रहे हैं। ग्रहेषु ये स्वतिथयो नार्चिताः सलिलैरपि यदि निर्यान्ति तेनूनम् फेरुराजा ग्रहोपमाः। जिन घरों से मेहमान एक गिलास जल भेंट किए गए बिना ही वापस चले जाते हैं, वे घर खेतों के उन बिलों के समान हैं जिनमें सियार रहते हैं। तो यहां पर जैसा कि आप लोग श्रवण कर रहे हैं अष्टम स्कंध, और इस अष्टम स्कंध जो कि मन्वंतर का वर्णन कहा जाता है, भागवत के जो 10 लक्षण दिए गए हैं दूसरे स्कंध के पहले 10वें अध्याय में 1 से लेकर 7 में, उनमें ये जो मन्वंतर का वर्णन है, मनुओं के काल का वर्णन इस अष्टम स्कंध में दिया गया है। ये आप लोगों ने पूर्व में ही श्रवण कर लिया है। श्रीमद् भागवत में जो 10 विषय वस्तु हैं, वस्तुतः श्रीमद् भागवत में एक ही विषय है, वो है श्री कृष्ण आश्रय। लिखा गया है कि तत्वानाम विशुद्ध्यर्थम, दशमस्य विशुद्ध्यर्थम तत्वानाम यह लक्षणम, कि दशम पदार्थ तथा श्री कृष्ण को जानने के लिए ये बाकी जितने भी 9 लक्षण दिए गए हैं। तो दशमस्य विशुद्ध्यर्थम मतलब दशम पदार्थ अथवा दसवां जो पदार्थ है, जो श्री कृष्ण जो आश्रय तत्व है, जो सबका आश्रय है, उसको समझने के लिए भागवत में बाकी जो 9 दिए गए हैं, सर्ग विसर्ग स्थान पोषण उदय आदि, ये केवल उस भगवान श्री कृष्ण को समझने के लिए, क्योंकि डायरेक्ट बात तो ऐसी समझ में आ नहीं सकती किसी को। यदि बात सीधी सीधी यदि किसी को समझ में आ जाए तो फिर उपदेश की आवश्यकता क्या रह गई। जैसे अर्जुन ने भगवान से कहा कि साधी माम त्वाम प्रपन्नम, अब तो मैं आपके शरणागत हूं, तो जब मैं आपके शरणागत हूं तो भगवान तो वही कह देना चाहिए था पहले ही उपदेश में कि सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज, कि सब धर्मों को छोड़ करके आ जाओ, युद्ध युद्ध क्या करना है, ये सब टेंशन मत लो। लेकिन भगवान ने ऐसा नहीं किया। जब अर्जुन पहले ही शरणागत थे तो पहले शरणागति में पहले ही उपदेश करना चाहिए था, लेकिन भगवान ने ऐसा नहीं किया। क्रम से उनको आत्म तत्व का ज्ञान कराया, कर्म के विषय में बताया, ध्यान के विषय में बताया, योग के विषय में बताया, भक्ति के विषय में बताया, सब कुछ बताया। क्यों बताया? इसी के लिए बताया क्योंकि जो साधक है, हम लोग और भी जितने बड़े बड़े हुए हैं और हो रहे हैं, जब व्यक्ति साधना करने के लिए जाता है तो उसके मन में स्वभावतः बहुत सारे प्रश्न उठते हैं। वो प्रश्न का समाधान केवल यदि किसी को कह दें हरे कृष्णा जपो हो जाएगा तो ऐसा व्यक्ति नहीं मानेगा। कोई आपसे पूछने आए प्रभु जी ऐसे कैसे हुए शास्त्रों में, और आप यदि उसको कह दें अरे हरे 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 कृष्णा बोलो राम राम बोलो अपने आप समझ में आ जाएगा। बात सही है, समझ में उसी से आना है, लेकिन उस समय उस व्यक्ति को उतना फेथ नहीं है उस नाम में, तो उसको किसी न किसी विचारों के माध्यम से उपदेश के माध्यम से वो ज्ञान कराया जाता है ताकि व्यक्ति समझ ले। तो इसी प्रकार से भागवत में भी जो 10 लक्षण कहे हैं वस्तुतः एक ही श्री कृष्ण का ज्ञान कराने के लिए, ताकि जितने प्रकार के संदेह उठते हैं मन में या आगे परीक्षित महाराज के अतिरिक्त जितने भी संदेह उठेंगे वो सारे के सारे यहीं समाप्त हो जाएं, ताकि भगवान श्री कृष्ण में अच्छे से मन लग जाए। नहीं तो 9 लक्षणों को क्या मतलब है सृष्टि के बारे में बताने का, क्या मतलब है अन्य अन्य विषयों को बताने का, सीधे केवल श्री कृष्ण की लीला बोल देते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया है पूरा बराबर। क्योंकि लिखते हैं जीव गोस्वामी की विशुद्धि अर्थम दशमस्य विशुद्धि अर्थम, दशम पदार्थ की विशुद्धि माने तत्व ज्ञान अर्थम, उसका ठीक ठीक समझने के लिए आपको ये पहले के जो प्रपंच और संसार का ज्ञान है वो जानना जरूरी होता है। तो क्योंकि यदि वो जानेंगे तो भगवान श्री कृष्ण को अच्छे से जानने में सरलता हो जाएगी, तो इसीलिए ऐसा किया गया है। तो अलग अलग मनवंतरों का वर्णन इसमें आया है, और आप लोगों को पता है कि इस मनवंतर का ज्ञान बहुत आवश्यक है। वस्तुतः भगवान के जितने अभी अवतार हैं इन्हीं मनवंतरों में किसी न किसी में हैं। भगवान के जो 25 अवतार हैं, लीला अवतार या कल्प अवतार कुछ भी बोलिए, ये जो 7वां मनु है वैवस्वत मनवंतर तक ये पूरे हो जाते हैं। इसके बाद कोई भी लीला अवतार कल्पावतार का वर्णन नहीं है। पहला वाला जो मनु है स्वयंभू मनु, उसमें ही भगवान के 14 अवतार तो उसी में होते हैं। ये नारद कपिल आदि के जितना भी अवतार है, मत्स्य वराह कूर्म का नहीं वराह आदि का, वराह का जन्म 2 बार है, वामन जी का 3 बार है, मत्स्य का भी 2 बार है, तो ऐसे मिलाकर के 14 तो केवल ऊपर ही हो जाते हैं पहले वाले में, बाद में दूसरे तीसरे में अवतार नहीं होता भगवान कोई भी लीला अवतार। बाद में फिर गजेंद्र के मोक्ष के लिए आते हैं, उसके बाद फिर चाक्षुष मनवंतर में सीधे कूर्म का वराह का फिर से मत्स्य का वहीं पर, और नरसिंह भगवान का ये 4 अवतार इसमें आ जाते हैं। उसके बाद बाकी जितने ही बचते हैं, इवन बावन का भी कहते हैं कि वैवस्वत मनवंतर की पहली चतुर्योगी में जन्म है, कुछ लोग चौथा बोलते हैं। इसी प्रकार से परशुराम जी का 17वें में, इसी प्रकार से भगवान श्री राम का 24वें में, और भगवान श्री कृष्ण बलराम का तो पता ही आपको अभी 28वें में। तो अलग अलग मनु के अलग अलग काल में अवतार हो जाते हैं। ये वाली जो कथा चल रही है ये चाक्षुष मनवंतर के अंत की कथा है। अंत की कथा यहां पर जो चल रही है वो चाक्षुष मनवंतर के अंत की है, क्योंकि दधि मंथन उसी समय हुआ था। और किसी किसी मनवंतर में भी कुछ कुछ अवतार, जैसे वराह भगवान का 2 बार अवतार हो गया, एक तो स्वयंभू मनवंतर के समय में जब पृथ्वी जल में चली गई थी अगस्त ऋषि के साप से, तो उस समय भी भगवान ब्रह्मा जी के नासिका से वराह का आविर्भाव हुआ और पृथ्वी को लेकर के आए और वापस फिर अपने धाम में चले गए, वहां पर हिरण्याक्ष का वध नहीं हुआ। हमारे भागवतम में मैत्रेय विदुर संवाद में ये प्रसंग मिल गया है। तो वराह का जो जन्म है और इस प्रकार से, और पहला वाला वराह और ये हिरण्याक्ष को जो मारे, ये दोनों मिल गए हैं, ये पता नहीं चलते हैं। इसको रूप गोस्वामी ने और अजीव गोस्वामी ने अपने तरीके से इसको समझाया और उदाहरण भी दिया, भागवत से ही उदाहरण दिया कि कैसे ये 2 अलग अलग मनवंतर के अवतार हैं। क्योंकि जो हिरण्याक्ष है उसका जन्म तो स्वयंभू मनवंतर में हुआ ही नहीं था, क्योंकि उस समय दिति थी ही नहीं, क्योंकि उस समय उनके पिता दक्ष थे ही नहीं। दक्ष का जन्म तो हुआ ही नहीं था, वो जो पहले वाले दक्ष थे वो तो ब्रह्मा जी के बेटे थे और उनकी तो सती आदि कन्याएं थी, द्वितीय अदिति धनु इत्यादि कन्याएं तो बाद में हुई। तो इसलिए भागवत के चौथे स्कंद के 30वें अध्याय के 49वें श्लोक में लिखा है कि चाक्षुषे त्वंतरे काल विद्रुते, कहते हैं कि चाक्षुष मनवंतर जब आया तब प्रचेतस के पुत्र के रूप में दक्ष का जन्म हुआ, और जब दक्ष का जन्म हुआ तभी तो द्वितीय अदिति आदि का जन्म हुआ और फिर उससे हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु का जन्म हुआ, तभी वहां पर उनको हिरण्याक्ष प्राप्त होते हैं चाक्षुष मनवंतर में। इसलिए जो पहले वाले जो वराह आए स्वयंभू मनवंतर में वो केवल आए और पृथ्वी को उठा करके स्थापित करके चले गए, और दोबारा में जो वराह आए वो हिरण्याक्ष का वध भी किया और पृथ्वी को भी लेकर आए ऊपर। हिरण्याक्ष पृथ्वी को नीचे नहीं ले गया था, कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि ले गया, लेकिन रूप गोस्वामी कहना है कि एक आकस्मिक प्रलय हुआ था उस समय, जिस प्रलय के चलते वो पृथ्वी चली गई थी, क्योंकि हिरण्याक्ष तो ऊपर गया हुआ था सबसे युद्ध की इच्छा करने के लिए कि मेरे साथ युद्ध करो। तो नारद जी ने बताया था कि हम लोग तो सब निर्बल हैं, तुम जाओ नीचे, वो महापुरुष हैं गर्भोदक साई विष्णु, वही तुमको सही युद्ध दे सकते हैं। तब फिर हिरण्याक्ष नीचे गया था, और जब नीचे गया तो वहां से भगवान ऊपर होकर के आ रहे थे, अब पृथ्वी को रखे और उसके साथ युद्ध किए, बाद में उसका वध किए। अलग अलग जगह में भागवत के पहले स्कंद के 3रे अध्याय में रसातलाम गताम महीम ऐसा लिखा हुआ है, रसातल में गई हुई पृथ्वी को भगवान उठाने के लिए आए। दूसरे स्कंद के 7वें अध्याय का पहले ही श्लोक है कि भगवान उस समय हिरण्याक्ष का वध किए, पृथ्वी को उठाए और हिरण्याक्ष का वध भी कर दिए। और 3रे स्कंद में तो आपको पता ही पूरा वर्णन है। तो इस प्रकार से ये मिश्रण होता है मनवंतरों में, लेकिन शील रूप गोस्वामी ने इसको बहुत अच्छे से सबको अलग अलग करके बता दिया ताकि हमारा संदेह समाप्त हो जाए इसमें। तो उसी के अंतर्गत यहां पर इस मनवंतर की कथा में, यहां भागवत में ऐसा है ना, बहुत सारे डाउट्स हैं, बहुत सारी अभी क्योंकि नया जो संस्करण है और नई नई चर्चाएं हैं इसमें बहुत प्रकार के प्रॉब्लम हैं। कुछ लोग तो यहां भी कहते हैं कि भागवत को एडिट किया गया है बाद में, है ना, कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि भागवत जब सुखदेव गोस्वामी कथा कर दिए उसके बाद एडिट किया गया है, उसको दोबारा उसको करके नया संस्करण हम लोगों को प्राप्त हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। भागवतम पूरा का पूरा भागवत में ही लिखा है कि भागवत शुरू से ही 18,000 श्लोकों का है और सुखदेव गोस्वामी ने उसका प्रवचन किया है, उसको सुनाया है परीक्षित महाराज को, जैसा जैसा वेदव्यास जी ने समाधि में देखा था, सुख उवाच परीक्षित उवाच जो भी देखा उसी क्रम से सुखदेव गोस्वामी ने वो सुनाया पूरा का पूरा, गुरु शिष्य परंपरा जैसा प्राप्त हुआ था। यहां तक कि जो चतुश्लोकी भागवत है, भागवत में तो ये भी लिखा है 12वें स्कंद के 13वें अध्याय के 19वें श्लोक में कि कस्मै येन विभासितोऽयं पुराणममलम्। ये पूरा का पूरा भागवत भगवान ने ब्रह्मा जी को पूरा भागवत बोला, तस्मै प्रोक्तम एतत् पुराणम 10 लक्षणम ऐसा भी है 2रे स्कंद के 9वें अध्याय में भी, 8वें अध्याय में 28वें श्लोक में कि भगवान ने पूरा का पूरा ये भागवत कहा, पुराणम 10 लक्षणम, तो 10 लक्षण से तो पूरा का पूरा आ गया 12 स्कंद। अब भागवत कहते किसको है कि तो भागवत की परिभाषा में श्रीधर स्वामी ने, विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी गोस्वामी ने, सबने एक मत्स्य पुराण पद्म पुराण कुछ श्लोक कोट किए हैं, ग्रंथोयम भाष्योयम ब्रह्म सूत्राणाम और पुराणम 10 लक्षणम 12वें स्कंद समन्वितम 18,000 श्लोक वाला पूरा 12वें स्कंद से युक्त ऐसा भागवत, और इसी भागवत को सुखदेव गोस्वामी ने श्रवण भी किया, तो पूरा पूरा सुना जैसा है, ये एक रचना है वेदव्यास जी की जिसको सुखदेव गोस्वामी ने सुना और वैसी सुनाया, अपने तरफ से कोई हेरा फेरी नहीं किया, नॉर्मल जैसा चलता है ऐसे ही सुनाया, क्योंकि विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने और श्रीधर स्वामी ने तो लिख दिया है कि यहां पर अभी मान लो सूत गोस्वामी कथा बहुत आगे जाकर करते हैं, जय श्री श्री राधा राज बिहारी जी की, श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, श्री गौर नित्यानंद प्रभु की जय। जैसे अभी सूद गोस्वामी कथा करने वाले हैं, बहुत आगे जाकर कथा करेंगे, लेकिन उसमें लिखा है सूत उवाच, कहीं लिखा है वेद व्यास उवाच, और वो कह रहे हैं वेद व्यास जी कह रहे हैं कि वेद व्यास जी ने कहा है ना, खुद भी अपने लिए भी वो एक इसको ग्रंथ रूप से तैयार किए हैं भागवत को, और उसी का पान सब करते हैं। श्रीधर स्वामी लिखते हैं कि अनागताश्चैव आख्यानेन अस्य शास्त्रस्य प्रवत्तेः, कि जो जो आख्यान अभी आए नहीं हैं उन आख्यानों के लिए भी श्रीमद् भागवत की प्रवृत्ति वहां पर है, उनको भी ये बताता है। और ये जो श्रीमद् भागवत है ये सुखदेव गोस्वामी ने सबसे पहले, नारद जी ने उपदेश श्री कृष्ण के जाने के पश्चात और परीक्षित द्वारा कली का जो निग्रह किया गया उसके बीच में उपदेश किया है। श्री कृष्ण के अंतर्धान के पश्चात नारद जी को उपदेश हुआ है वेदव्यास जी को, और परीक्षित महाराज ने जब कली दिग्विजय किए उस पर निग्रह किए उस समय उनके बीच की कथा है, उस समय उपदेश हुआ, उसके बाद उन्होंने लिखा, समाधि में स्मरण किया, फिर बाद में सुखदेव गोस्वामी को सुनाया पढ़ाया सब कुछ किया। इसीलिए सुखदेव गोस्वामी केवल 16 साल के नहीं हैं, 16 साल के दिखाई पड़ते हैं। एक्चुअल में जीव गोस्वामी ने एक श्लोक कोट किया है 9वें स्कंद के 21वें अध्याय के 25वें श्लोक में, बहुत लंबी व्याख्या दिया है, सकृतव्याम सुख कन्यायाम ब्रह्म दत्तम अजीजनत, कि सुखदेव गोस्वामी की एक कन्या है जिसका नाम कृत्वी है, तो इसमें विवाद ना हो इसलिए जीव गोस्वामी ने काफी लंबा संवाद ब्रह्म विवाद पुराण से उठा करके पूरा रख दिया है वहां पर। तो उसमें जीव गोस्वामी ने लिखा है कि वो जो सुखदेव गोस्वामी हो कोई और हैं, अपने से अलग सुखदेव गोस्वामी की कथा बता रहे हैं, कोई सुख नाम से कोई और व्यक्ति हुए हैं। तो उसमें उन्होंने साफ साफ लिखा है कि सुखदेव गोस्वामी 12 वर्ष की अवस्था तक अपनी मां के गर्भ में रहे, फिर बाहर आए, और जब बाहर आए तब श्रवण किया, 2-4 साल तक तपस्या किया, उसके पश्चात आए। इसलिए जो जन्म है सुखदेव गोस्वामी का ठीक 12वें साल में हुआ, और उसमें भी कब हुआ कैसे हुआ आपको पता है कि भगवान सुखदेव गोस्वामी ने बोला कि जब भगवान स्वयं आकर सांत्वना देंगे कि तुमको माया नहीं पकड़ेगी तभी मैं बाहर आऊंगा। तो सुखदेव उस समय वेदव्यास जी जाकर द्वारका से श्री कृष्ण को लेकर के आए, और द्वारका से लाए और भगवान श्री कृष्ण ने जब सांत्वना दिया तब उसके पश्चात सुखदेव गोस्वामी ने बोला हाँ ठीक है, और भगवान उसी समय वेदव्यास जी ने भगवान श्री कृष्ण को विदाई दी और वो चले भी गए। तो सुखदेव गोस्वामी का जन्म भी ऐसा ब्रह्मवैव पुराण की जो टीका है जीव गोस्वामी के द्वारा कोट की उसमें लिखा है। तो सुखदेव गोस्वामी का जन्म उनका पहले ही जब श्री कृष्ण थे धराधाम में तभी हो गया था, और भागवत का उपदेश भी आकृष्ण निर्गमा त्रिंश वर्ष आदि गते कलऊ, सुखदेव गोस्वामी ने जो कथा किया भागवत की वो भी 30 वर्ष के बाद, श्री कृष्ण के जाने के 30 वर्ष के बाद, ऐसा पद्म पुराण के जो भागवत महात्म का 6वां अध्याय है उसका 94वां या 90वां श्लोक है उसमें लिखा है कि 30 वर्ष के बाद ऐसा कथा किया। तो इससे यह ज्ञात होता है कि सुखदेव गोस्वामी 12 साल या 16 साल के नहीं थे उस समय, 30 साल तो ऐसे ही मोटा मोटा हो गया जब कथा किए, अब बाकी उसके पहले ही आए भी थे उनके पास में वो तो। लेकिन भागवत में ही लिखा है पहले स्कंद में 19वें अध्याय में कि द्वेष्टि वर्षम, वो 16 साल के से दिखाई पड़ते थे, इतने प्यारा था उनका स्वरूप, जैसे सनत कुमार 5-6 साल के दिखते हैं ऐसे सुखदेव गोस्वामी भी 16 साल के दिखाई पड़ते हैं, 16 साल के ही हैं ऐसा नहीं, 16 साल के लगने वाले ऐसा सनत कुमारों को जैसे। तो इस प्रकार से पूरी भागवत को उन्होंने इस प्रकार से कह डाला बाद में। तो ये भागवत के विषय में कुछ ऐसी चर्चाएं हैं जो लोगों के मन में डाउट रहती हैं, लेकिन हमारे जो आचार्य हैं इनको बहुत अच्छे से व्यवस्थित करके इन बातों को समझाया है, तो किसी प्रकार का संदेह नहीं करना चाहिए। इसलिए भागवत को किसी व्यक्ति के, जिसको भागवत पता है जानता है, महाप्रभु बोलते हैं कि भागवत को भागवत के स्थान में पढ़ना चाहिए, किसी अच्छे भक्त को जिसको ठीक से पता है नहीं उल्टा सीधे समझा देगा। तो इसीलिए ये इस प्रकार से कहा और वहीं सारी भागवत सुखदेव स्वामी ने कहा और चले गए। परीक्षित महाराज भी उस समय 60 वर्ष के थे जिस समय उन्होंने भागवत सुना था। तो इस श्रीमद् भागवतम में इस प्रकार से सुख परीक्षित का संवाद प्राप्त होता है जिसमें ये मन्वंतर की कथा के अंतर्गत अतिथि का महात्म्य इस श्लोक में विशेष रूप से लिखा गया है। और प्रभुपाद ने भी बहुत बड़ा तात्पर्य नहीं लिखा लेकिन अनुवाद में ही सारी बात लिख दिया। देखिए भारत की संस्कृति रही है कि ब्रह्मचारी का धर्म क्या है, क्या है? सेवा करना गुरु की, गृहस्थों का अतिथियों की सेवा करना, वानप्रस्थों का तपस्या करना और जो सन्यासी है उनका केवल भगवत चिंतन करना। लेकिन भगवत चिंतन तो चारों आश्रमों का है, कॉमन है। वो एक केवल शुष्क वर्णाश्रम के अनुसार परंपरा है लेकिन दैवी वर्णाश्रम में तो भगवान का विचार भगवान का चिंतन तो सबको ही करना है। तो यहां पर इसलिए अतिथि का मतलब होता है न तिथि इति अतिथि, जिसकी कोई तिथि नहीं है। नए तत्पुरुष समास हो गया है शब्द में, तिथि माने डेट, जो व्यक्ति बता के न आए। अब पहले फोन नहीं था, कुछ व्यवस्था नहीं थी, इसके लिए सब अतिथि होते थे। लेकिन इस समय कोई अतिथि रह नहीं गए, सारे सतिथि हैं, क्योंकि सबकी तिथि फिक्स है, हमको पता है। इवन घर के द्वार तक आते आते बताते हम बस आ गए आपके पास में, इसी मोहल्ले में, इस गली में, यहीं पर आ रहे हैं। तो व्यक्ति बता करके आता है। लेकिन एक जो अतिथि है वो सदा से अतिथि है और सदा अतिथि रहेगा, वो है मृत्यु। मृत्यु किसी को डेट बता के नहीं आता है, आती है। इसलिए हमारा वस्तुतः सबसे बड़ा जो अतिथि है, जो हमेशा अतिथि रहेगा, हर जन्म में अनंत जन्मों में अनंत बार अतिथि बन चुका, वो केवल मृत्यु है। बाकी अतिथि तो तिथि वाले भी हो सकते हैं, जैसे आजकल वाले सतिथि हो गए हैं। तो इसीलिए हर व्यक्ति को अपना जो वास्तविक अतिथि है उसके आने के पहले ही सारी तैयारी कर लेनी चाहिए। और उसकी तैयारी केवल भक्ति है, साधना है, जो मन को स्ट्रांग जो भगवान में लगा ले उस अतिथि के आने के पहले। नहीं, संसार का अतिथि तो आपका दाल चावल खा के थोड़ा ही हो सकता है कि घटा के जाए, नुकसान करके जाए, लेकिन मृत्यु तो भारी नुकसान करके जा सकता है। वेद कहता है, कठोपनिषद में लिखा है दूसरे अध्याय की तीसरी वल्ली के चौथे मंत्र में, कि इह चेद सकत बोधुम प्राक शरीरस्य विश्रसः ततः सर्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते। यदि व्यक्ति मृत्यु को आने के पहले, मृत्यु रूपी जो अतिथि है उसके आने के पहले जिसने भगवत तत्व ज्ञान नहीं किया, वो व्यक्ति हजारों हजारों करोड़ों जन्मों के लिए वो नीचे की ओर गिर जाएगा। इसलिए दोबारा चांस मिलेगा कि नहीं मिलेगा कोई गारंटी नहीं है। इसलिए वेद में ये बात सब जगह, भागवत में, भागवत के 11वें स्कंद के 7वें अध्याय का 74वां अंतिम श्लोक है, उसमें बोलते हैं भगवान कि यह प्राप्य मानुषम लोकम मुक्ति द्वारा अपावृतम। जो व्यक्ति इस मनुष्य को, देह को प्राप्त करके, जो कि साक्षात भगवत प्राप्ति का द्वार है, इसको प्राप्त करके जो केवल संसार में फंसा रहता है, वो व्यक्ति को कहते हैं आरूढ़ च्युतम तम विदुह। उस व्यक्ति को कहते हैं ऊपर से गिर गया, आरूढ़ च्युत माने ऊपर चढ़ गया था, अधम से नीचे आ गया, तो उसको आरूढ़ होकर के च्युत हो गया। तो उस व्यक्ति को विद्वान लोग कहते हैं ये तो ऊपर से गिरा हुआ है, टपका हुआ। जैसे एक बर्तन है, आप किसी सीढ़ी से गिर जाए तो छन 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 करते 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 सबसे नीचे आके गिरेगा। तो ऐसे ही मनुष्य जो देह है सबसे ऊंचा है, बड़ी मुश्किल से प्राप्त होता है, और वो मिला और बाद में उसमें भगवत प्राप्ति नहीं हुई तो सीधे नीचे आ गए। तो इसीलिए तो ये अतिथि वस्तुतः हमारा मृत्यु है। लेकिन ये मृत्यु भी क्या चीज है, इसको अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से बताया है। भागवत में कपिल देव ने, उनकी अलग ही परिभाषा है मृत्यु की, वेद में अलग ही परिभाषा है मृत्यु की, सब जगह अलग अलग है परिभाषा, हम उस पर नहीं जाएंगे, बहुत लंबी चर्चा है, आप लोग पढ़ लेना तीसरे स्कंद के 31वें अध्याय में 39 से लेकर 44 तक मृत्यु की परिभाषा कपिल देव जी ने बोला है। लेकिन वस्तुतः ये मृत्यु अतिथि वास्तविक हमारा असली मृत्यु है जिससे हमको बचना है। तो फिर ये जो सामान्य अतिथि है उसका क्या किया जाए? इतना अतिथि भारी पड़ेगा कि लोगों ने इस पर पिक्चर बना दिया है ना, अतिथि तुम कब घर, तो अतिथि तुम कब जाओगे, एक पिक्चर भी शायद बनी अतिथि तुम कब जाओगे। और यहां पर महाभारत में अनुशासन पर्व में और आसु धार्मिक पर्व में इतना लंबा लेक्चर है कि सैकड़ों श्लोक लिखे हुए अतिथि के ऊपर, अतिथि के ऊपर इतने सारी बातें लिख दिया कि वस्तुतः अतिथि का सेवन सबको करना है। हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग तो ब्रह्मचारी हैं, मंदिर के जो ब्रह्मचारी हैं आप लोग कह देंगे कि हमारा धर्म तो बस गुरुजी की आज्ञा पालना, अतिथि तो गृहस्थ का कार्य है। लेकिन हम चूंकि अभी हम घर के ही अंदर हैं, पहले तीन आश्रम जंगल में होते थे, ब्रह्मचारी वानप्रस्थ और संन्यास, उनका घर नहीं बनता था, ऐसा बिल्डिंग छत नहीं बनती थी, तो इसलिए उसको गृहस्थ नहीं कहते थे। अभी तो ग्रहे तिष्ठति इति गृहस्थ, संस्कृत में गृहस्थ मतलब ग्रहे तिष्ठति इति गृहस्थ, जो घर में रहता है घर बना करके। हम शहर में भी रहते हैं, पूरी व्यवस्थाओं के साथ रहते हैं, लोगों के साथ मिलते जुलते हैं, लोगों का दक्षिणा भी खाते हैं, पैसा भी लेते हैं, दान भी लेते हैं, मंदिर के लिए लेते हैं, तो इसलिए हमको सबका सत्कार तो करना ही पड़ेगा। और यदि किसी का आतिथ्य नहीं करना तो जाओ जंगल में बैठ जाओ। और वैष्णवों का तो वो हमारा अतिथि नहीं, वो तो साक्षात भगवत स्वरूप है। इसलिए एक अतिथि है संसारी व्यक्ति और एक अतिथि है भगवान के भक्त, जैसे अभी प्रभुपाद के सारे शिष्य लोग आने वाले हैं, तो इनको तो उसी प्रकार से ट्रीट करना पड़ेगा भगवान के भक्तों को जैसा भगवान को करते हैं, उनका आतिथ्य सेवन करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, इसी प्रकार से सामान्य व्यक्ति को सामान्य तरीके से आप कर सकते हैं। तो महाभारत में लिखा है कम से कम 13-14 बातें हैं, मेरे दिमाग में जितनी बात आएंगी मैं आपको बताऊंगा। अतिथि का इतना महात्म्य है, और वो आतिथ्य वही व्यक्ति कर सकता है जिसका अंतःकरण पिघला हुआ है, जिसका अंतःकरण बहुत कोमल है, कठोर हृदय वाला व्यक्ति आतिथ्य कभी नहीं कर सकता, वो तो बिल्कुल गिद्ध की दृष्टि से देखता है कब भाग जाए, क्या हेडेक आ गई एक है हमारा खाना यहां पर और दिमाग चाटने आ गया है। लेकिन महाभारत में लिखा है कि मोघम अन्नम स्नाति सदा यह न अतिथिम पूजयेत, कि जो व्यक्ति अतिथि की पूजा नहीं करता है आए हुए अतिथि की और अन्न ऐसी खा लेता है, कहते हैं कि वो पाप का अन्न खाता हो व्यक्ति। इस प्रकार से कहते हैं कि स्वदेशे परदेशे वाप्य अतिथिम नोपवासयेत, अतिथि के लिए तो इतना तक लिख दिया कि अपने देश में हो अपने घर में या परदेश में भी कहीं आपको ऐसा अतिथि मिल गया, ऐसी अवस्था में आप हैं, तो कहते हैं उसको कभी उपवास नहीं कराना चाहिए, उसको भूखा नहीं छोड़ना चाहिए। और अतिथि का मतलब ये नहीं कि मेरे घर वाला मेरा अतिथि, इनके घर वाला मेरा नहीं हुआ, अतिथि सबके लिए हो सकता है यदि एक परिवार में एक मंदिर में रहते हैं तो। अयम निजः परोवेत्ति गढ़ना लघु चेतसाम, ये मेरा है ये उसका है, ये तो जो छोटा हृदय वाला व्यक्ति है ना, क्षुद्र हृदय, वो ऐसा सोचता है। परंतु उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, जिसका बड़ा हृदय वो तो सोचता है पूरी पृथ्वी मेरी है, सब तो अपने ही है, सब तो भगवान के अंश है, सबकी सेवा करना है, ये मेरा पराया तो बहुत छोटा व्यक्ति सोचता है। ये गलती हम लोग कर बैठते हैं कई बार, इसलिए कहते हैं कि तस्मात, कहते हैं इसीलिए गृहस्थ आश्रमस्थस्य नान्यत् दैवतमस्ति वही, कहते हैं गृहस्थ आश्रमी के लिए विशेष रूप से गृह अतिथि का पूजन के अतिरिक्त तो कोई उसके लिए बड़ा धर्म नहीं है। लेकिन भगवत धर्म एक अलग चीज है, उसकी चर्चा हम इसके पश्चात करेंगे, लेकिन ये जानना जरूरी है अतिथि ऐसी चीज है। ना अतिथिस्ते अवमंतव्य, अतिथि की अवमानना कभी नहीं करना चाहिए। आजकल इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि लोग स्पीड हो गई है, लाइफ बहुत ज्यादा स्पीड हो चुकी है, तो लोग अभी इग्नोर कर देते हैं घर में आए हुए व्यक्ति को, झूठ बोल देते हैं। जैसे कोई फोन किया हम आ रहे हैं मान लो, तो लोग झूठ बोल देते हैं हम घर पर नहीं है, मीटिंग में है, दो दिन के लिए जा रहे हैं बाहर। मैंने सुना एक दो लोगों से ऐसा करते हुए सच में, तो ऐसा होता है, झूठ बोल देते हैं हम घर पर नहीं है, कोई हेडेक नहीं लेना चाहता, अतिथि को बहुत बड़ा सिरदर्द मानते हैं। इस प्रकार से कहते हैं कि जो अतिथि है, पात्रम तो अतिथिम आसाध्य शीलाध्यम यो न पूजयेत, कहते हैं कि जो व्यक्ति पात्र अतिथि को प्राप्त करके उसकी पूजा नहीं करता, उसका सत्कार नहीं करता है तो उसका क्या हाल होता है। तो कहते हैं कि कुत्सितम दत्वा कुत्सित दत्वा दुष्कृतम तस्मै पुण्यम आदाय गच्छति। कहता उस व्यक्ति को जो उसका सत्कार नहीं किया उसको पाप देकर के और सारा पुण्य लेकर के चला जाता है। इसलिए घर में आए हुए किसी ब्राह्मण साधु और अतिथि का सेवन करना आवश्यक है। ये सामान्य कॉमन सेंस है, इसमें कोई बहुत बड़ी शास्त्रार्थ की आवश्यकता नहीं है। ये सामान्य व्यक्ति से आपका चित्त पता चलता है आपके पास एक रूपये रहे चाहे न रहे। मैं आपको एक कथा बताऊंगा इस पर अतिथि सेवन की, कि जरूरी नहीं कि उसमें आपके पास पैसा ही होना चाहिए, कि आपके पास है तो ही करेंगे, जो है उससे कर दो, नहीं कर सकते तो बस मीठी वाणी बोल दो, आसन दे दो, जल पिला दो, और क्या है, इससे ज्यादा क्या व्यक्ति को चाहिए। वैसे भी संसार में तीन ही रत्न विशेष हैं, अन्नम जलम सुभाषितम पृथ्व्याम संति तीनि रत्नानि अन्नम जलम सुभाषितानि, है कि नहीं। तीन ही रत्न है, अन्न जल और अच्छी वाणी, बाकी तो मूर्खों के द्वारा पाषाण खंडेशु रत्न संगेत विधि थे, बाकी तो मूर्खों ने उनको पत्थर के हीरा सोना चांदी आदि में रत्न बना दिया है। किसी को खूब सारा हीरा दो और दस दिन से भूखा प्यासा रहे तो लेगा, कभी नहीं लेगा। खाना एक दिन न मिले तो सारा सोना सब बेकार हो जाएगा, सारा हीरा बेकार हो जाएगा, किसी को अच्छा नहीं लगेगा। सोने की बिस्किट से पेट थोड़ी भरेगा, पेट तो भरेगा आटे की बिस्किट से। तो इसलिए ये जरूरी है। कहते हैं गृहस्थ से तू धर्मोग्रियम संप्राप्त अति पूजनम, कि गृहस्थ का धर्म है कि सबसे पहले अतिथि की पूजन करना, उसको सही सेवा करना। गृहस्था नाम तो सुश्रोणी, कहते हैं कि गृहस्थ जितने भी हैं उन लोगों के लिए विशेष रूप से, ब्रह्मचारियों के पास तो नहीं है, वो लोग यहां पर आश्रित हैं, सन्यासी भी के पास कुछ नहीं आश्रित हैं, लेकिन उनकी तो उल्टा गृहस्थों को सेवा करना चाहिए। लेकिन फिर भी जब उनके मंदिर में कोई गृहस्थ आए तो उनको भी प्यार से बात तो कम से कम कर लें, ये उनका भी धर्म बनता है, क्योंकि उनका ही दिया गया अन्न खाते हैं, उनके दिए गए दान को खाते हैं, इसलिए भी मीठी वाणी बोल दिए तो कोई बात नहीं, ये उनके लिए उतना ही आतिथ्य है बस, ब्रह्मचारी सन्यासी के लिए। ये नहीं कि पूरा छप्पन भोग बना बना करके, अब जरूरी नहीं, नहीं तो व्यक्ति इसमें फंस जाएगा बुरी तरह से। तो इसलिए इस प्रकार से कहते हैं चक्षुर दद्यात मनोदद्यात वाचम दद्यात सुभाषितम उत्थाय आसनम दद्यात ऐसा धर्म सनातन। सनातन धर्म की रीति है कि चक्षुर दद्यात, चक्षु दे दे अपना, चक्षु दे दे मतलब आंख निकाल के नहीं देना, अच्छी दृष्टि से देखे आए हुए व्यक्ति को। मनोदद्यात बड़ी अच्छी भावना से सोचे उसके विषय में और प्यारी प्यारी मीठी भाषा बोल दे। कहते हैं उठ करके आसन प्रदान कर दे कम से कम कुछ नहीं तो, ऐसा धर्म सनातन, यही सनातन धर्म है। तो इसलिए जिस व्यक्ति को अपना कल्याण करना है, जिस गृहस्थ को विशेष रूप से, उसको आतिथ्य सेवन जरूर करना चाहिए। लेकिन भगवत भजन छोड़कर के सब कुछ करना ये ठीक नहीं है, क्योंकि मनुष्य राक्षस देवता ये तीनों माया की श्रेणी में है। आप इनकी चाहे जितनी सेवा करेंगे, इनमें यदि मन अटक गया तो इनको ही प्राप्त करेंगे। बहुत किसी संत की यदि आप आतिथ्य करते हैं तो वो भगवत सेवा ही है एक प्रकार से। इसको भगवान ने स्वयं भागवत में 11:43 में बोलते हैं कि आतिथ्येन तु विप्राग्रे, कि किसी मेरी जो पूजा है किसी संत या ब्राह्मण की उपासना उसके आतिथ्य करने से हो जाती है। अब ऐसे भी मद पूजा कहते हैं, मद भक्त पूजा आप व्यधिका 11:19-21 में भगवान कहते हैं कि मेरी जो पूजा से ज्यादा मेरे भक्त की पूजा है, तो उनके आतिथ्य की बात अलग है, क्योंकि तस्मिन तज्जने भेदाभावात, भगवान में और भगवान के भक्त में ज्यादा भेद नहीं है, भेद ही नहीं है इस प्रकार से सेवा आदि की दृष्टि में। तो इसलिए संतों की सेवा, भगवान की सेवा, ब्राह्मणों की सेवा एक ही प्रकार से आती है। तो इसलिए उनकी सेवा में उस सामान्य अतिथि नहीं है वो। प्रभुपाद तो बोलते हैं कि यदि किसी घर इस प्रकार सन्यासी चला जाए तो उस व्यक्ति का बहुत बड़ा कोई भाग्य है, इसके लिए वो व्यक्ति उसके घर में आया है, ऐसा मानना चाहिए। तो इसीलिए वो उसकी सेवा, उस संत की सेवा ही भगवत भजन हो जाएगा, उसी में अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा उसका। नारद जी आदि को देखिए, अतिथि सेवन किए, संतों की सेवा किए और इसी से उनका काम बन गया। तो इस प्रकार से इतने सारा महात्म्य है कि हम सबको करना चाहिए, और ये आवश्यक है। और एक अवसर अभी मिला है, प्रभुपाद के सारे शिष्य लोग आ रहे हैं तो उनकी सेवा में लग जाएं, है ना। कई बार अतिथि ज्यादा खाने लगता है तो व्यक्ति सोचने लगता है ये कैसा है, कितना सारा खा रहा है, लेकिन ऐसा सोचना भी अपराध है, समझे। एक बार साउथ इंडिया में विष्णु कांची एक स्थान है, आपने सुना होगा, वहां पर दो पति पत्नी रहते थे जो बहुत दरिद्र थे, भिक्षा मांग करके ब्राह्मण खाते थे सब जगह। तो एक बार पता नहीं भगवान उनका साधु का वेश बनाकर उनके घर पर आए, तो जब उनके घर पर आए तो देखा अब उनके घर में कुछ नहीं, उस दिन तो भिक्षा भी नहीं प्राप्त हुई थी उनको, तो जब उनको भिक्षा ही नहीं प्राप्त हुई तो अतिथि सेवन कैसे करें। और उन्होंने अपने पत्नी को कह दिया था कि देखो मैं घर पर रहूं चाहे न रहूं, यदि किसी प्रकार से कोई भी अतिथि आता है उसकी सेवा जरूर करना। अब उनका ही अन्नदाना केवल भिक्षा से चलता था और उस दिन भिक्षा वहां पर मिली नहीं उनको, तो जब उनको भिक्षा प्राप्त ही नहीं हुई और अतिथि महाराज आ बैठे, बोले आज तो भंडारा यहीं पर होएगो, भंडारा तो आज यहीं होगा, तमिल में बोले होंगे अपने उसमें, तो आज तो भंडारा यहीं होगा। अब वो सोचने लगे, उसकी पत्नी धीरे से बुलाई, सुनिए आज तो अपने घर में कुछ है नहीं, अब इनको कैसे भंडारा करें, कैसे इनको खिलाएं। तो उनके पति ने कहा कि तुम्हारे पास कोई शादी का कोई जोड़ा, कोई सोना चांदी या कुछ है कपड़ा जिसको बेच करके कुछ ले आया जाए। उसने बोला हमारे पास तो कुछ नहीं, इतने ज्यादा दरिद्र थे, कोई सोने का एक टुकड़ा भी नहीं था कि नाक कान में कुछ लगा हो तो निकाल करके दे दें, कुछ भी नहीं था। तो जब कुछ नहीं था तो उसकी स्त्री इतनी अच्छी थी, उसने क्या किया, उसके सुंदर बाल बहुत सुंदर थे तो उसके लंबे से बाल को बांधा और आधे बाल को काट दिया, काट करके दे दिया उसकी रस्सी बना करके, बोला जाइए इसको मार्केट में बेच दीजिए, कुछ पैसा मिलेगा इससे दाल चावल ले आना। वो ऐसे गए मार्केट में, काट करके रस्सी बना करके बेच करके आए, दाल चावल मिला और उनको बढ़िया से खिला दिया। बाद में अतिथि कहे कि देखिए अब तो बहुत खा लिए, अब सोच रहे यहीं पर सो जाएं। अच्छा ऐसा है कि शाम को हम ज्यादा नहीं खाएंगे, हल्का ही खाएंगे थोड़ा, अब ये और आफत में आ गई, हल्का खाएंगे, अभी तो हमारे पास एक टाइम का नहीं है, कह रहे अभी शाम का भी प्लान बना रहे हैं। तो उन्होंने फिर भी कुछ नहीं बोला, हाँ हाँ ठीक है शाम को भी खिलाएंगे आपको, वहीं पर उनको बिठा दिया, सुला दिया अच्छे से। और उसके बाद फिर शाम का जब प्रोग्राम शुरू हुआ तो वापस उन्होंने फिर अपनी चोटी काटी, कुछ था ही नहीं, गए फिर वैसी रस्सी बना करके बेच करके लाए और वापस उनको दाल चावल खिलाया पिलाया। और रात्रि हुई, बोले अब तो हम यहीं पर सोना चाह रहे हैं, तो वहीं पर वो सो गए दोनों, उनके पैर हाथ दबा रहे हैं, तो दबाते दबाते अचानक इन दोनों की नींद लग गई, पैर दबाते दबाते, और वो वहां से चले गए। तो इतने में जब नींद खुली इनकी सुबह, तो देखिए कहां गए अतिथि, अरे कोई अपराध तो नहीं हो गया, कोई क्या ऐसा हमने गलत तो नहीं कर दिया, हमको बिना बताए ही छोड़ करके चले गए। तो उस समय जिस समय वो ऐसा कर रहे थे वो उनको अतिथि की पड़ी थी, लेकिन थोड़ी देर बाद जब देखा तो देखा कि हाथ में उनकी स्त्री के सोना चांदी से पूरा भरा हुआ था पूरा शरीर। और जब वो उनको उसका भान भी नहीं था और वो दौड़ करके बाहर गए, यहां वहां ढूंढने लगे। अच्छा ढूंढने लगे तो साक्षात भगवान वहां पर प्रकट हुए, बोले मानना पड़ेगा तुम्हारा क्या आतिथ्य है, तुमने अपनी सुंदरता को बिगाड़ करके भी अतिथि सेवन किया, हम इतना नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारे सामर्थ्य के अनुसार जो भी बने उतना करना चाहिए, हम अपनी चोटी काट कर भी कोई वैल्यू नहीं, छोटी छोटी है वैसे भी, और भी कुछ कपड़ा बड़ा भी नहीं बेचना है, और जो रखा दक्षिणा है उसको भी नहीं देना है, भगवान की प्रभुपाद की कृपा से सारा कुछ है, गंगा जी का पानी वहीं पर गंगा में ही दे देना है, तो सारे उन्हीं के शिष्यों के द्वारा किया कराया है, उन्हीं का उन्हीं में सेवा कर देना है, कुछ अलग से काम करने की आवश्यकता भी नहीं है। तो ऐसे भगवान ने उनको बर दिया, बोला वाह तुमको बहुत आशीर्वाद, सारा भर दिया उनका घर धन धान में, और कह दिया कि तुम इसी प्रकार से अतिथि सेवन करते रहो, बाद में मेरे धाम को आ जाओगे। इसी प्रकार से कुछ कथा पशु पक्षियों की भी आती है कि एक बार दो बहेलिए वो कपोता कपोती थे, जंगल में एक ब्याध फंस गया। जब वो ब्याध फंस गया, सोचिए इनका आतिथ्य तो और ज्यादा, अपनी जान दे दी आतिथ्य में, तो ये जब पेड़ के नीचे पेड़ पर दोनों कपोता कपोती बैठे हुए थे उस समय, और वो ब्याध थक करके आया, भूखा प्यासा, थोड़ा पानी गिरने लगा तो वहीं लेट गया, पेड़ के नीचे बैठ गया। तो जब पानी भी गिर गया, ठंडी का समय था, तो कहीं पर बाद में वहीं लेटा डाला रहा बेचारा, इंतजार करता रहा कि धूप निकले कुछ हो। तो कहते हैं कि कहीं पर, लेकिन जंगल में कई बार आग लग जाती है ना, जंगल में आग लग जाती है, हल्का फुल्का पानी गिरा होगा या ठंड रही होगी, जो भी है, तो कपोता कपोती ऊपर बैठे और बोले देखो हम लोग ऊपर बैठे हैं तो ये हमारा अतिथि है, बेचारा ठंड से कांप रहा है, क्या इसके लिए कर रहे। तो उन्होंने कपोता गया जंगल में ढूंढने के लिए गया कहां पर आग लगी है, तो देखा कि जहां आग लगी थी तो इन लोगों ने एक एक करके पहले पत्ता गिरा दिया, पत्ता गिराया, फिर बाद में वहां पर कुछ पत्ते इकट्ठे हो गए, इसको मालूम भी नहीं पड़ा क्या हो रहा है, ये कहीं से गए और आग को थोड़ा सा जो आग लगी थी उसकी लकड़ी को उठाकर दांत में फंसा करके अपनी जान जोखिम में डाल करके लाए और वहां पर जहां पत्ते डले हुए थे वहीं पर वो डाल दिया, वहीं आग लग गई। बाद में उस ब्याध ने भी थोड़ा और लकड़ी वकड़ी मिला करके सूखी सूखी आग लगा दिया। उसके बाद ऊपर से दोनों देख रहे हैं कि बेचारा भूख से तड़प रहा है, इतना भूखा है, लगता है रास्ता भटक गया है, तो क्या करें इसके लिए। तो उन दोनों ने सोचा कि देखो अब हमारे पास तो इसको खिलाने के लिए कुछ नहीं है, तो जब हमारे पास नहीं तो कैसे इसका सत्कार करें, क्या इसके लिए कर रहे हैं। तो कपोती ने बोला ऐसा है कि मैं अपने आप को इसी में जला देती हूं, मैं इसमें गिर जाऊंगी, जल जाऊंगी, ये ब्याध है, पशु पक्षी तो खाते हैं ब्याध लोग, तो बोले ये मुझे खा लेगा, पेट भर लेगा। कपोता बोलता है एक से इसका पेट भरने वाला नहीं है, किसी हो तुम, तो एक काम करते हैं दोनों चले जाते हैं। तो एक एक करके दोनों आग में गिर पड़े, दोनों जल गए, वो कपोत उसको बाद में उसने खा लिया। तो इसमें स्टोरी में ये बताना चाह रहे हैं कि सनातन वैदिक काल से ही अतिथियों का सेवन को इतना महात्म दिया गया है कि व्यक्ति अपनी जान को जोखिम में देकर के भी अतिथि सेवन किया है। तो इसीलिए अतिथि का सेवन आवश्यक है और करना भी चाहिए, लेकिन ब्रह्मचारियों के लिए जो उपदेश है वेद में, उनका कहना है कि ज्यादा झंझट में नहीं पड़ना चाहिए। संतों की सेवा कर दिया, कई बार कई गृहस्थों से मिलते रहते हैं, बार बार वो आना जाना लगा रहता है, तो फिर उनका अध्ययन रुक जाता है, जब तब रुक जाता है, उस प्रपंच में पड़ जाते हैं। इसलिए वेद में तैतृय उपनिषद के शिक्षावल्ली में, पहले ही वल्ली में, नौवें अनुवाक में कहा गया कि ऋतम च स्वाध्याय प्रवचने चा, सत्यम च स्वाध्याय प्रवचने चा, धमस्य स्वाध्याय प्रवचने चा, समस्य स्वाध्याय प्रवचने चा, अग्नेस्य स्वाध्याय प्रवचने चा, अग्निहोत्रम च स्वाध्याय प्रवचने चा, अतिथयस्य स्वाध्याय प्रवचने चा। ठीक है तुम कुछ भी करो, चाहे अतिथि सेवन करो चाहे कुछ भी करो, लेकिन स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम, ये विशेष रूप से है कि स्वाध्याय और प्रवचन से प्रमाद नहीं करना चाहिए। सेल्फ स्टडी दो चार घंटा कम से कम पढ़ना चाहिए, पढ़ेंगे सिद्धांत का ज्ञान होगा तो ही आगे बढ़ेंगे। आजकल ये जो इंटरेस्ट है धीरे धीरे पढ़ने का क्यों खत्म हो रहा है, ब्रह्मचारियों का क्या, हमारा क्या, किसी का भी नहीं हो रहा है। जब से मोबाइल में फेसबुक और व्हाट्सएप चालू हुआ इससे हमारी दिमाग और खराब हो चुका है, हम इतनी सारी फालतू बातें पहले ही पढ़ लेते हैं कि बाद में भगवद गीता भागवत हमको नीरस लगने लगता है, उसमें ही इतने चुटकुला कहानी आते हैं, इतने प्रकार के तरह तरह के वीडियो आते हैं कि उसको पढ़ने के बाद हमारा भागवत की जो रस है वो हमको छोटा लगने लगता है, इसके लिए हम उसको नहीं पढ़ते हैं। इसलिए सबसे ज्यादा नुकसानदायक है फेसबुक और व्हाट्सएप, इस समय जो मैसेजबाजी है ना, अच्छा वीडियो है, बहुत अच्छा है, देखो जरा खोल करके, फोटो बड़ी अच्छी आ रही है, कुछ नहीं प्रीचिंग तो कर रहे हैं, इससे क्या है, एक ग्रुप बना लिए हैं, ये नुकसानदायक है। बस इतना प्रैक्टिकल बात है सबकी, मेरी भी अपनी सबकी, कि इससे फायदा तो किसी को होता नहीं है, भगवत भक्ति में उन्नति किसी की होती नहीं है, केवल एक नशा बनते जाता है मोबाइल यूज करने का, हर दो चार मिनट में हाथ जाता है, हर दो मिनट में हाथ जाता है उसमें, है ना, कहीं मैसेज तो नहीं आ गया, बंद भी पड़ा रहेगा तो कोई मैसेज तो नहीं किया खोलकर देखने का, एक नशा सा लग गया है। इतना नशा हमारे जब करने में और किसी में नहीं जाएगा जितना नशा मोबाइल में चला गया है। तो इंटॉक्सिकेशन क्यों प्रभुपाद ने मना किया, और ये कारण ये न्यूज़पेपर क्यों मना किया, वो कारण इसी के लिए मना किया, टीवी देखना इसे, क्योंकि एक नशा लग जाता, अब नाटक में क्या होगा, अब क्या होगा, तो अब क्या होगा, अब जो भी होगा लेकिन नुकसानदायक होगा। तो इसीलिए ये बहुत खतरा चीज है, सबको डेली भागवत नियमित रूप से दो तीन घंटा पढ़ना चाहिए और सुनना चाहिए, और डेली लेक्चर में बैठ करके सुनना चाहिए, प्रभुपाद ने इतना अच्छा अवसर दिया है। पढ़ करके समझने का, लेकिन ये तभी संभव हो सकता है जब ये दो चीजों से विरत हो जाएंगे, क्योंकि इस समय का बहुत भारी नशा हो चुका है और जिन जिन लोगों की आदत हो वो पढ़ने में मन नहीं लगा सकते, बहुत मुश्किल है। क्षण क्षण में डिस्टर्बेंस होता है, थोड़ी थोड़ी देर में कोई ना कोई नई मैसेज, नया फोटो, नया वीडियो आता है, दिमाग खराब होता है। अच्छा लगता है, लेक्चर का नाम होता है कि हम तो अपने मोबाइल में हम तो प्रवचन सुनते हैं, लेकिन प्रवचन वचन कोई नहीं सुनता है। थोड़ी देर प्रवचन सुनिए, कोई बढ़िया वीडियो आए उसी में फंस गया है कि नहीं। गए थे आस्था चैनल खोलने के लिए, रास्ता में ही आस्था खत्म हो जाती है, आधे रास्ते में ही वो गई, वो देखने गए वहां पर बॉक्सिंग हो रही है, कहीं कुछ हो रहा है, खत्म। तो इसीलिए आस्था संस्कार का नाम ही है केवल, मुश्किल होता है, बहुत प्रैक्टिकल नहीं है हमारे लिए। इसीलिए हमको इस समय मैं देख रहा हूं कि धीरे धीरे करके जो इंटरेस्ट है सबका पढ़ने में, अध्ययन में, श्रवण में नहीं हो रहा है, एक दूसरे में श्रद्धा भी नहीं है, एक दूसरे केवल दोषारोपण, दोष देखना और वो करने की बुद्धि आ गई है ना, कोई किसी से सुनना भी नहीं चाहता है। ये एक बहुत बड़ी बीमारी हो गई है और ये इस बीमारी से हम सब लोग जूझते हैं, मैं तो जूझता हूं, आप लोगों का पता नहीं ऐसा होता है। तो लेकिन ये बीमारी से तभी हट सकते हैं जब फिर से अपने आप को उसी प्रकार से पुराने जैसे नए नए आए ही इसी के लिए थे, है ना। हिंदी में कहते हैं कि आए थे भजन करने को, कूटन लगे कपास। तो फालतू आए थे भजन करने के लिए, पढ़ने, भागवत समझने, और बाद में फालतू के काम में शुरू हो गए। तो इसीलिए नियमित रूप से पढ़ने का मोबाइल, फेसबुक, व्हाट्सएप को जरूरत नहीं है। जो प्रचार करते हैं, जो अथॉरिटी हैं, जो लोग उसमें बैठे हैं, वो लोग अपना यूज करें, वो लोग अपना काम करें। जो सामान्य हम लोग छोटे हैं, नए नए लोग, हमको तो अपना इंटरेस्ट इसमें देना चाहिए और यही हमारा आधार है और इसी से हमारे को सारा ज्ञान होगा, इसी से हम आगे रहेंगे और सदा भक्ति में रहे आएंगे। कुछ दिन बाद नहीं तो ये नीरस लगेगा, समझ में नहीं आएगा, बेकार लगेगा, बकवास जा करके फिर दूसरे की गुलामी करना पड़ेगा बाहर काम वाम कुछ पैसे के लिए, और फिर जानते कितनी प्रॉब्लम होती है संसार में। तो इसीलिए ये जरूर पढ़ना है, आदत नहीं है। ये जो नए नए मोबाइल आते हैं, बहुत शौक होता है एक अच्छा अच्छा खाने का और इस समय बढ़िया बढ़िया रखने का, ये दोनों खतरनाक है। बढ़िया बढ़िया खाने की इच्छा और बढ़िया बढ़िया पहनने और रखने की इच्छा, ये बहुत बहुत डेंजर है। आईफोन रखेंगे 6, फिर प्लस आएगा, फिर कुछ आएगा, फिर कुछ आएगा, ये तो आता रहेगा। सिंपल हमको बात करके काम चलाना है और उसमें बस काम हो जाएगा। इसलिए मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूं, कोई मेरे से बोला था ये बात बोलने के लिए कि ये बात बोला था किसी ने, और सच में आश्रम में हर जगह, हर व्यक्ति चाहे गृहस्थ हो चाहे ब्रह्मचारी हो, सब जगह ये प्रॉब्लम है। और आप लोग खुद इसको रियलाइज कर सकते हैं कि ये कितना खतरनाक है। इंटरनेट, अंतरजाल, फेसबुक को मैंने नाम दिया आस्य पुस्तकम, मुख की पुस्तक है वो, मुंह दिखते हैं उसमें, चेहरा देखने के लिए उतावले रहते हैं, बाद में वो खोलते खोलते क्या क्या नहीं खुल जाता है, उल्टी सीधी साइट में अंतरजाल तो वही है, एक के बाद फिर उसमें कब पतन हो जाता है मालूम भी नहीं पड़ता है। इसलिए ये बहुत अच्छी चीज नहीं है कि इसमें बहुत इंटरेस्ट दिया जाए, नए नए मोबाइल में, नई नई डिवाइस में, नई नई कम्युनिकेशन की जो एप्स आती हैं, कोई जितना बड़ा एप्स भागवत है उससे बड़ा कोई भी ऐप नहीं है, सारी चीजें इसके अंदर है जो भी जानकारी लेना है, ठीक है। तो इसीलिए ताली बजा करके उड़ा नहीं देना। तो इसीलिए ये बात को समझना है सच, और डेली पढ़ना है, नियमित रूप से पढ़ना है। जो वरिष्ठ सीनियर भक्त है उनके पास जाकर के समझना है, ये संबंध बनाएगा। हमको इंटरेस्ट ही नहीं है, हम कुछ समझने ही नहीं चाहते हैं। इसलिए तो बाद में कल कोई प्रश्न कर रहा था ना कि जब करते हैं मन नहीं लगता है, मन वन नहीं लगेगा अभी मन तो कुछ और चाह रहा है ना। पैर में पहले ही आपने रस्सी बांध लिया, आप कहें कि मार्चिंग करेंगे तो हो ही नहीं सकता है। तो पहले ही तरह तरह की कामना बैठा के रखे हैं और कुछ पाना चाहते हैं और फिर यहां भी जाना चाह रहे हैं, तो इम्पॉसिबल, संभव नहीं होता है। धीरे धीरे उसको खोलें, धीरे धीरे अभ्यास करें तो आगे बढ़ते हैं। इसलिए भागवत को नियमित रूप से पढ़ें। बाकी तो ये प्रवचन तो देखिए ऐसे चलता रहेगा और डेली इसका लाभ मिलना चाहिए और कुछ उन्नति होना चाहिए कि मैं जब आया था तो इतनी प्रोग्रेस थी। हमारी भक्ति में क्या होता है कि एकदम से जब आते हैं तो बहुत प्रोग्रेस हो जाती है, अब बाद में 10 साल बाद जसी आए तसी, जितनी अवस्था में थे वैसी वापस आ गए, जैसे पहले निंदा बुराई सब करते थे उसी कंडीशन में आ जाते हैं। फिर प्रोग्रेस 30 साल तक भी नहीं होती, 50 साल के हो जाते हैं उतने ही रहे आते हैं, फिर कम हो जाती क्योंकि इंटरेस्ट धीरे धीरे कहीं और चला गया ना, लक्ष्य कहीं और बन गया। इसलिए आज श्रीला गोपाल भट्ट गोस्वामी का भी आविर्भाव दिवस है, बहुत बड़ा दिन है, समय मेरे ख्याल से समाप्त हो गया है ना। लेकिन इतना जान लें कि गोपाल भट्ट गोस्वामी की देन है जो हम लोग भागवत के सिद्धांतों को समझ रहे हैं। इवन जीव गोस्वामी ने भी, पहले गोपाल भट्ट गोस्वामी ने ही षट संदर्भ उसको लिखा था, बाद में थोड़ा वो व्यवस्थित नहीं था सिस्टम से, तो जीव गोस्वामी ने उसको एडिट करके ठीक से उसको व्यवस्थित करके लिखा। इसी प्रकार से हरिभक्ति विलास में भी उन्होंने अपना एडिट किया उन्होंने। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी के विषय में आप लोगों को अच्छे से पता है, समय हो गया नहीं तो इसके विषय में भी बताते। कोई आपत्ति तो नहीं है 5-10 मिनट की? ठीक है, जरूरी है जानना, क्योंकि हमारे संप्रदाय में ऐसे ऐसे आचार्य हुए हैं कि जिनके कारण से ही सब जगह एक्चुअल में भक्ति विस्तृत है, फैली हुई है। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी का जो जन्म है साउथ इंडिया में श्रीरंगम क्षेत्र में हुआ था। उनके पिताजी जो क्या नाम था, वेंकट भट्ट, तमिल भाषा का शब्द है वेंकट। मैं इसकी संस्कृत में सोच रहा था ये शब्द का अर्थ क्या होगा, लेकिन मुझे पता चला कि ये तो तमिल शब्द है वेंकट है ना, तो समझ में नहीं आया। तमिल भाषा अलग है, संस्कृत अलग है, तमिल शिवजी ने बनाया है। तो वेंकट भट्ट ने क्या किया, वो तो वैष्णव श्री संप्रदाय से दीक्षित थे। 1503 में इनका जन्म हुआ था गोपाल भट्ट गोस्वामी का, इसी महीने आज पौष में। तो जब वेंकट भट्ट के यहां पर जब इनका जन्म हुआ और महाप्रभु भी उस समय गए थे, जिस समय लगभग इनकी आयु उस समय 8 साल के रहे होंगे, 1511 में लगभग महाप्रभु गए तो साउथ इंडिया की यात्रा में, तो उनके पिताजी से जब मिले तो महाप्रभु पहले मिले नहीं थे, बहुत सारी बातें हैं, कीर्तन वीर्तन किए तो उनके पिताजी मिले, फिर उन्होंने देखा कि ये तो साधारण व्यक्ति नहीं है, महापुरुष है, तो बाद में महाप्रभु को अपने घर में भी ले गए। जब घर में ले गए तो गोपाल भट्ट को महाप्रभु ने अपने गोदी में खिलाया है, उठाया अपने गोदी में लिया, आशीर्वाद भी दिया। बाद में जब उनके घर पर रहे तो महाप्रभु की और वेंकट भट्ट की चर्चा हुई, तो महाप्रभु ने बोला ऐसे मजाक मजाक में कि राधा कृष्ण की जो उपासना है लक्ष्मी नारायण से ज्यादा श्रेष्ठ है ना, और देखो तुम्हारी जो लक्ष्मी है इतनी बड़ी पतिव्रता स्त्री है, वो भी भगवान श्री कृष्ण को पाना चाहती है, एक गाय चराने वाला बालक है श्री कृष्ण हमारा, लेकिन उसकी आराधना करती है। तो वेंकट भट्ट को उस समय इतना, क्योंकि वो श्री संप्रदाय से थे, तो उन्होंने बोला नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, नारायण और श्री कृष्ण तो वस्तुतः एक ही चीज है। तो बोले एक ही चीज है तो फिर क्यों आई है, जब दोनों एक ही हैं तो फिर ये क्यों आई लक्ष्मी जी, और जब आ गई तो उनको एंट्री नहीं मिली, वो आज भी तड़प रही हैं। उपनिषद भी आई और आराधना किए ब्रज में, लक्ष्मी जी भी आई, लेकिन लक्ष्मी जी को रास में एंट्री नहीं मिली, लेकिन उपनिषद को जो ऋषि रूप थी और भी ऋषि थे उपनिषद थे वो स्त्री रूप में जो आए उनको एंट्री मिल गई। तो जब उनको एंट्री मिली तो बोले लक्ष्मी को इसलिए नहीं मिली क्योंकि लक्ष्मी अपना ऐश्वर्य नहीं छोड़ना चाहती हैं, वहां भी बने रहना चाहती हैं और ब्रज का रस भी लेना चाहती हैं, इसके लिए लक्ष्मी जी को एंट्री ही नहीं मिली वहां पर। अब बोला देखो इसीलिए श्रयत इंदिरा सस्वदत्र ही, लक्ष्मी जी यहां पर प्रवेश करती है, प्रमाण है भागवत में कि लक्ष्मी जी भी ब्रज के रस को चाहती हैं। रूप गोस्वामी ने वस्तुतः लिखा है कि नारायण और श्री कृष्ण में कोई भेद नहीं है, स्वरूपता भेद नहीं है, दोनों अंतरंगा शक्ति के गवर्नर हैं, एक ही चीज है। लेकिन कहते हैं कि रसेन उत्कृष्टते श्री कृष्ण, लेकिन रस की दृष्टि में श्री कृष्ण की उत्कृष्टता है, क्योंकि जो नारायण रूप है चतुर्भुज, उसमें महाप्रभु ने समझाया कि नारायण रूप से भगवान लीला नहीं करते हैं, लेकिन जो श्री कृष्ण रूप है उसमें ही सारी लीलाएं, आप दास की भक्ति कर लो श्री कृष्ण की, और सख्य की कर लो, वात्सल्य कर लो, माधुरी कर लो, सारे रसों की भक्ति श्री कृष्ण में मिलेगी, इवन किसी अन्य जो स्वरूप है उसमें भी नहीं मिलेगी, भगवान श्री राम के स्वरूप में भी नहीं मिलेगी, समझे। भेद नहीं है, जैसे मीठा तो मीठा है लेकिन फिर भी उस मीठे में थोड़ा अंतर है। जैसे कलकत्ता का रसगुल्ला हो और हमारे यहां की जलेबी हो, अब बताओ मीठे की दृष्टि से दोनों मीठे हैं लेकिन स्वाद ज्यादा किसका है? रसगुल्ले का स्वाद है। वही गन्ना से शक्कर भी बनती है, मिश्री भी बनती है, चीनी भी बनती है, गुड़ भी बनता है, चारों मीठे हैं लेकिन फिर भी आपको किसी घर में जाए और गुड़ की चाय पिला दे तो आदमी क्या गाली नहीं देगा? बेकारी है क्या ये? तो कोई नहीं पसंद करता है। मिश्री सर्व प्रकार के रोगों को दूर करके भी और इतना आनंद देने वाली होती है, सबसे अधिक स्वादिष्ट होती है मिश्री, रोग भी नहीं होता है। तो मिश्री तो श्री कृष्ण का जो स्वरूप है, विष्णु नारायण अन्य अन्य जितने स्वरूप हैं वो बाकी सब गुड़ मिश्री शक्कर है, गुड़ शक्कर चीनी आदि है, लेकिन जो श्री कृष्ण है वो मिश्री रूप है, समझे? क्योंकि साधना की भी दृष्टि से देखा जाए तो श्री कृष्ण में आप किसी भी रूप से आप श्री कृष्ण की आराधना कर सकते हो। आप श्री राम को माधुर्य रस में सोच सकते हो कभी? गोपियों के साथ में सोचा ही नहीं जाएगा, विचार ही नहीं कर सकते आप। आपको तो मालूम है कि एक स्त्री के पति सीता पति ही रहे हैं केवल, तो इसलिए हो ही नहीं सकता, इसलिए पूर्ण पुरुषोत्तम केवल श्री कृष्ण ही है। दास्य में भी सोच सकते हैं, सख्य में भी सोच सकते हैं। तो इसलिए हमारे जो आचार्य ने शास्त्रों के में क्या लिखा है, बड़ा छोटा, श्री कृष्ण बड़ा कि विष्णु बड़ा कि शिव बड़ा, इसमें नहीं समझाया। हमारे जो आचार्य उन्होंने समझाया रस की दृष्टि में समझाया कि रस यदि तुमको पूर्णतम सबसे बड़ा रस चाहिए, ब्रज रस चाहिए, जिसको शिवजी भी पाना चाहते हैं, लक्ष्मी जी भी पाना चाहती हैं, सब पाना चाहते हैं, तो श्री कृष्ण की ही आराधना करो बस। इसलिए इस दृष्टि से, बाकी आपको जो चाहिए वो तो मिल ही रहा है संसार में। तो ऐसा समझाया तो उनको बाद में समझ में आ गया वेंकट भट्ट को, और फिर महाप्रभु कुछ दिन वहां जब रहे समझाने के बाद वो भी वैष्णव बन गए, श्री संप्रदाय से राधा कृष्ण के आराधक बन गए। फिर बाद में गोपाल भट्ट गोस्वामी जब महाप्रभु जाने लगे तो उनके चरणों में वंदना किया, तो महाप्रभु ने बोला ऐसा है कि अब तुम्हारे माता पिता भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं, इनकी बढ़िया से सेवा करो दोनों की, और सेवा के बाद तुम वृंदावन आ जाना। तब जिस समय उनके माता पिता बूढ़े हो गए तो एक दिन क्या बोला उनको बुला करके, बोला ऐसा बेटा अब तुम जाओ वृंदावन, बोला अब तो हम लोग मरने ही वाले हैं, अब तुम वृंदावन को निकल जाओ। तो वृंदावन जाने के उनके पेरेंट्स ने बोला, और किसी के माता पिता बोलते जाओ वृंदावन में भजन करो? किसी का कोई नहीं बोलेगा, सब मायाबद्ध हैं। तो इसलिए महाप्रभु ने उनको बोला कि गोपाल भट्ट को माता पिता की सेवा करो, यदि माता पिता परम भागवत हैं भगवान के तो कोई दोष नहीं है, यदि संसारी एक कर्मी व्यक्ति है तो भारी दोष है। हो सकता है आप अटैच्ड हो और वहीं पर उनका चिंतन करते करते आप भी मरे, तो जहां उनका जन्म रहे तो आपका भी हो जाए, इसीलिए विचार करना चाहिए। तो वहां पर उन्होंने अपने बेटे को भेजा, बोला जाओ महाप्रभु के पास, मतलब वृंदावन चले जाओ। जब वृंदावन गए तो रूप गोस्वामी तो महाप्रभु को मैसेज ही लिख रहे थे, क्योंकि उनको मालूम पड़ा था कि गोपाल भट्ट गोस्वामी आ रहे हैं। तो बढ़िया रूप सनातन ने दोनों खातिरदारी किया, उनको गेस्ट के रूप में अच्छे से स्वागत किया और बहुत सारी चीजें हुई। बाद में महाप्रभु जो को जब पता चला तो महाप्रभु ने वहां से अपनी प्रसादी अपने वस्त्र आदि भेजे और उसको ही धारण कर लिया गोपाल भट्ट गोस्वामी ने, और वृंदावन में रहने लगे। कुछ समय के बाद वो हरिद्वार ऐसी यात्रा में निकले गंडकी नदी की तरफ में, तो जब यात्रा में निकले तो एक रास्ते में सहारनपुर के पास में किसी गांव में बहुत तूफान आया था, तो वहां पर कोई व्यक्ति था तो उसके घर में चले गए वो, और वहीं पर रुक गए। तो फिर बाद में उनका सेवा सत्कार हुआ, तो उनके कोई बेटा नहीं था, पुत्र नहीं था, तो गोपाल भट्ट गोस्वामी ने बोला कि ठीक है तुमको पुत्र हो जाएगा जल्दी। तो उन्होंने बोला ठीक है यदि पुत्र होगा तो सबसे पहला बेटा आपकी सेवा में जाएगा, ऐसा बोल करके अपना वो चले गए। बाद में गंडकी नदी में गए और वहां से उनको शालिग्राम प्राप्त हुए, शालिग्राम 12 शालिग्राम थे उनके पास में, गले में ही लगाए रहते थे ना वो, तो यहाँ ऐसा तो हाँ अभी भी है। तो 12 शालिग्राम जब प्राप्त हुए वापस आए वृंदावन में, और जब वृंदावन में आए शालिग्राम की सेवा कर रहे थे, सेवा करते करते एक दिन अचानक कोई व्यापारी आया, और व्यापारी जब आया तो उन्होंने बहुत सारे कपड़े वस्त्र आदि सोना चांदी का भी चीजें दिया, लेकिन ये सोच में पड़ गए, भगवान को देख देख रोने लगे, बोले अरे मेरे पास इतना है लेकिन मैं आपको पहनाऊं कैसे, गोल गोल शालिग्राम, अब उनको कैसे पहनाया जाए। तो जब ऐसा विचार करके वो रुदन कर रहे थे, उसी वो तो पेड़ के ऊपर लटके, वो तो पेड़ में पेड़ के नीचे रहते थे, राधारमण मंदिर जहां पर वहां पेड़ था, उस पेड़ के नीचे बैठे, अपने सालिग्राम को बॉक्स में रखे और लटका दिए, वहीं पर लटके रहते थे, 12 सालिग्राम थे। आज भी राधारमण भगवान के पीछे ना सालिग्राम है, दिखाते नहीं है वो, किसी गोस्वामी ने बताया कि जो सालिग्राम है जिससे प्रकट हुए वो सालिग्राम पीछे कमर के पास में वो है सालिग्राम। तो जब वहां पर रात्रि के समय में इस प्रकार से रुदन करके सो गए, मेरे पास कुछ नहीं, कैसे सेवा करूं ये सब करके, तो बाद में सुबह देखा तो भगवान उसमें एक स्वरूप ले लिए थे राधा रमण का। तो रूप सनातन आदि को सबको पता चला, तो वो लोग आए और बाद में उनका नाम दे दिए, राधा रमण उन्हीं ने नाम दिया, गोपाल भट्ट गोस्वामी ने नहीं दिया, रूप गोस्वामी ने नाम दिया। तो जब नाम दिया राधा रमण, और बाद में उनकी सेवा करने लगे, लेकिन उनका विजन तो महाप्रभु को देखना था, महाप्रभु के वो भक्त थे, तो उसी राधा रमण में उनको महाप्रभु दिखते थे और उसी रूप में वो सेवा भी करने लगे। बाद में कुछ समय के बाद में से सेवा करते करते, बहुत समय हो गया, 75 साल या कितने साल जिए वो रहे धराधाम में, बाद में वो एक लड़का आया एक दिन, बोले कि आप कौन, बोला पहचाने जब आप सहारनपुर गए थे तो वहां पर किसी को आशीर्वाद देकर आए थे, मैं वही उन्हीं का बेटा हूं। तो उनका गोपीनाथ नाम था, तो गोपीनाथ को बाद में सेवा में लगा दिया, वो गोपीनाथ भी आजीवन ब्रह्मचारी रहे वहां गोपाल भट्ट गोस्वामी के राधारमण की सेवा की है। बाद में फिर गोस्वामियों के और परिवार उनके आशीर्वाद से जो बने वो आज सेवा कर रहे हैं। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी ने बाद में, वो बहुत बड़े विद्वान थे, छोटे से ही व्याकरण छंद शास्त्र आदि सब पढ़ लिए थे। हमारे जितने भी आचार्य हैं वो गोपाल भट्ट गोस्वामी बहुत, उनका एक्चुअल में जो भागवत के जितने भी रहस्य जो सठ संदर्भ के माध्यम से दिए उन्होंने दिए, जीव गोस्वामी की उपज नहीं है, जीव गोस्वामी नहीं, उनकी उपज थी दिमाग की गोपाल भट्ट गोस्वामी के, उन्होंने बराबर उसको लिखा सठ संदर्भ को, और उनमें अलग अलग तत्वों को संबंध अभिधेय प्रयोजन को बढ़िया से समझा दिया। और उसको लिखने के बाद फिर सनातन को जीव गोस्वामी ने भागवत की टीका बाद में लिखी 7वें नंबर में, तो उसी को जीव गोस्वामी ने एडिट करके उन्होंने नाम भी लिखा, तत्व संदर्भ में उनको प्रार्थना भी किया कि गोपाल भट्ट जो दक्षिण के बहुत बड़े विद्वान हैं, मैं उनकी वंदना करता हूं जिनकी कृपा से भागवत का ज्ञान प्राप्त हुआ, और उनको वो एडिट करते हैं। तो बाद में उन्होंने एडिट किया, सनातन गोस्वामी के साथ मिलकर के उन्होंने हरिभक्ति विलास को भी एडिट किया, फिर वो सत्क्रिया सार दीपिका जो है, जो पूजा पद्धति की है, उसको भी उन्हीं ने लिखा। इस प्रकार से गोपाल भट्ट गोस्वामी का हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है, और आज 3 तारीख से लेकर 9 तारीख तक या 13 तारीख तक बहुत बड़ा उत्सव चल रहा है राधारमण मंदिर में, बड़े बड़े विद्वानों को बुलाया गया है, भागवत का पाठ प्रवचन सब कुछ होगा, तो दर्शन लाइव भी रहता है। आज के दिन कम से कम आपको दर्शन करना चाहिए, है ना। इस प्रकार से लेकिन राधारमण का जो आविर्भाव है वो बैसाख महीने में हुआ था। आज के दिन गोपाल भट्ट गोस्वामी का, राधारमण का जो आविर्भाव बैसाख में होता है, बढ़िया सजाया जाता है मंदिर को। तो इस प्रकार से गोपाल भट्ट गोस्वामी का जो सहयोग है महाप्रभु के मिशन में समस्त जीवों के उद्धार के लिए, वो अत्यधिक महत्वपूर्ण था, जिसको हमको पढ़ना चाहिए, और अच्छे से आप चेतन चेतामृत में पढ़ सकते हैं। और भी बहुत सारी बातें हैं जो कहने के लिए हैं, लेकिन अब समय के अभाव में इतना ही कहेंगे, वाणी को विराम देंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, शिला गोपाल भट्ट गोस्वामी महामहोत्सव की, शिला प्रभुपाद की, निताय गौर हरि प्रेमानंदे। किसी को कोई प्रश्न हो वो व्यक्तिगत रूप से मिल सकते हैं, क्योंकि बाकी समय हो गया।